का था, रूह वही, रूप नया।
फरीदी और लियोनार्ड के भाग तीन में आपने सुना कि किस तरह रास्ते से गजाला गायब हो गई। क्या उसने फरीदी को चकमा दे दिया? क्या वो वाकई लियोनार्ड की कोई जासूस है? क्या फरीदी गजाला को सचमुच ढूंढ पाया? किस तरह फरीदी ने हमीद को फजलू बनाकर न्यूस्टार के दफ्तर में प्लांट कर दिया और खुद एक आर्मी अफसर बनकर किसी खोज में निकल पड़ा? क्या वो गजाला को ढूंढने निकला था? क्या वाकई गजाला नवाब रशीदुज्जमा की बेटी है? आगे क्या हुआ सुनिए भाग चार में। दो घंटे का सफर तय करके फरीदी दाराब नगर स्टेशन पर उतरा। रात के लगभग 10 बज चुके थे। स्टेशन पर उसे एक फटीचर सी टैक्सी दिखाई दी। वो उसमें बैठ गया और नवाब रशीदुज्जमा के महल की तरफ रवाना हो गया। नवाब साहब बहुत बड़े जागीरदार थे और नंबरी कंजूस। उनकी बेशुमार दौलत की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। बहुत से लोगों का तो यहां तक ख्याल था कि नवाब साहब ने जो इतनी दौलत जमा की है वो जौ की रोटी खा खा कर जमा की है। उनके और वारिस शाहाना जिंदगी गुजारते थे, मगर वे खुद बहुत ही सादा जिंदगी बसर करने के आदी थे। आज भी वे अभी तक नहीं सोए थे और दोपहर ही से वो किसी खास चीज में उलझे हुए थे। बात बात पर लोगों से उलझ जाते थे। उस वक्त वे बेचैनी के साथ दीवान खाने में टहल रहे थे। अचानक एक नौकर प्लेट में किसी का विजिटिंग कार्ड लेकर आया और मेज पर रख कर खामोशी से खड़ा हो गया। कर्नल ईएम खान, लाहौल विला कुवत, ये भी कोई वक्त है मिलने का? जाओ भेज दो। कुछ देर बाद फरीदी कर्नल खान के भेस में दीवान खाने में आया। नवाब साहब ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश की। फरमाइए कैसे आना हुआ, नवाब साहब ने पूछा। मैं एक बहुत ही खास काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। फरमाइए, नवाब साहब ने चौंक कर कहा। मैं बहुत दूर से आया हूँ, जरा दम तो ले लूँ तो फिर कुछ कहूँ, फरीदी ने आराम कुर्सी पर तकरीबन लेटते हुए कहा। नवाब साहब की भावें तन गईं, लेकिन उन्होंने फिर फौरन ही अपने चेहरे पर नरमी के आसार पैदा कर लिए। उन्होंने घंटी बजाई और एक नौकर आया। कुछ पीजिएगा, नवाब साहब ने फरीदी से पूछा। सिर्फ पानी, फरीदी ने जवाब दिया और नौकर चला गया। पानी पीने के बाद फरीदी ने सिगार जलाया। हाँ तो अब फरमाइए, नवाब साहब बेताबी से बोले। इन्हें आप पहचानते हैं, फरीदी ने जेब से एक तस्वीर निकालकर नवाब साहब की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नवाब साहब ने जैसे ही तस्वीर हाथ में ली उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे फरीदी को घूरने लगे। आप ठहरिए, मैं अभी आकर इसका जवाब देता हूँ, नवाब साहब ने कहा और दीवान खाने से पैर पटकते हुए चले गए। फरीदी सिगार का कश लेता हुआ दीवान खाने की दीवारों पर लगी तस्वीरों का जायजा लेने लगा। थोड़ी देर बाद नवाब साहब वापस आए। उनके हाथ में एक पिस्तौल था। फरीदी चौंक पड़ा। आहा, मैं इसे पहचानता हूँ और तुम जैसे बदमाशों को भी अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ ले आई है, नवाब साहब गरज कर बोले। फरीदी हंसने लगा। अभी हंस रहे हो मियाँ, लेकिन याद रखो इसके लिए तुम्हारे घर वालों को रोना पड़ेगा, नवाब साहब ने उसी अंदाज में कहा। मालूम नहीं आप क्या समझ रहे हैं, फरीदी ने आराम से कहा। मैं सब कुछ ठीक समझ रहा हूँ। तुम इस तरह मुझ पर से रुपया नहीं ऐंठ सकते। ओहो हो, समझा, फरीदी ने संजीदगी से कहा। तो मामला यहां तक पहुंच चुका है। बहुत अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंच गया। अच्छा, अब कोई दूसरी चाल न चलने वाली तुम्हारी? देखो यहां बड़े बड़े बदमाशों की लाशें दफन हैं, नवाब साहब चीख कर बोले। चलिए ये दूसरी बात मालूम हुई, फरीदी हंसकर बोला। अब कि तुम हंसे और मैंने गोली चलाई, नवाब साहब ने झल्ला कर कहा। और फिर कल इस इमारत का चप्पा चप्पा पुलिस से भरा होगा, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। ए, ये गीदड़ भभकी किसी और को देना, मुझे रशीदुज्जमा कहते हैं और मैं आपसे सच कहता हूं कि मुझे कर्नल खान नहीं कहते हैं, फरीदी ने इत्मीनान से कहा। वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ, लेकिन आप कुछ नहीं जानते। फरीदी ने अपनी जेब से दूसरा कार्ड निकालकर नवाब साहब को देते हुए कहा, ये क्या?
ये मेरा दूसरा विजिटिंग कार्ड।
बस बस रखे रहो, तुम उस वक्त तक मेरी कैद में हो जब तक कि मेरी लड़की मुझे वापस ना मिल जाए। तो क्या आपको इसकी तला मिल गई है? फरीदी ने कहा। बकवास!
फरीदी सोच में पड़ गया था इस सिरफिरे को किस तरह रास्ते पर लाया जाए। नवाब साहब का गुस्सा देखकर उसे उलझन हो रही थी कि कहीं सचमुच इन्होंने गोली चला दी तो।
अचानक वो लेटे लेटे उछला और दूसरे ही पल नवाब साहब का रिवॉल्वर उसके हाथ में था और खुद नवाब साहब जमीन पर। अगर जरा भी आवाज निकाली तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, फरीदी ने दबी हुई आवाज में कहा। मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर फरीदी हूँ। झूठ है, सरासर झूठ है। देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, धीरे बोलिए। नवाब साहब खामोश हो गए। जमीन पर पड़े वे अभी तक फरीदी के हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर की तरफ देख रहे थे। उठकर बैठ जाइए, फरीदी ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। नवाब साहब खामोशी से उठकर बैठ गए। मालूम होता है कि अब बदमाशों ने आपको धमकी दी है, फरीदी ने कहा। गजाला बेचारी पहले मेरे ही पास आई थी मदद के लिए, बदमाशों को मालूम हो गया और उन्होंने उसे गायब कर दिया। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम फरीदी हो, नवाब साहब ने कहा।
आप यकीन करें या ना करें, मुझे तो अपना काम करना ही है। और ये भी आपको बता दूं कि खुफिया पुलिस को आपकी लड़की पर शक हो गया है कि वो मुझे धोखा देने आई थी।
अरे भला वो क्यों तुम्हें धोखा देने लगी, फरीदी ने सारा किस्सा कह सुनाया। अच्छा है कमबख्त उन्हीं की कैद में मर जाए, उसने खानदान की इज्जत पर बट्टा लगा दिया, नवाब साहब बोले।
अव्वल तो वो बेकसूर है, और अगर इस मामले की तह में वाकई कोई बात है तो उसके 100% जिम्मेदार आप हैं।
आपने उसे क्यों इतनी आजादी दी थी कि वो एक नौजवान प्राइवेट सेक्रेटरी के साथ स्विट्जरलैंड गई?
हाँ,
मेरा ही कसूर है, लेकिन तुम ये किस तरह कह सकते हो कि गजाला बेकसूर है?
वो तस्वीर सिर्फ रुपया ऐंठने के लिए खींची गई थी। गजाला एक तफरीगाह में किसी वजह से बेहोश हो गई थी। प्राइवेट सेक्रेटरी उसे उठाकर गाड़ी की तरफ ला रहा था, किसी ने उसी हालत में दोनों की तस्वीर ले ली।
खुदा करे तुम ठीक कह रहे हो।
आपने यूरोप के मशहूर ब्लैकमेलर लियोनार्ड का नाम सुना है, फरीदी ने कहा।
हाँ, मैंने अखबारों में पढ़ा है उसके बारे में।
तो ये हरकत उसी की है। आजकल वो हिंदुस्तान आया हुआ है और हम लोग उसे गिरफ्तार कर लेने की फिक्र में हैं, फरीदी ने कहा।
लेकिन मुझे तो अब भी यकीन नहीं आता कि तुम फरीदी हो, नवाब साहब ने कहा,
क्योंकि मैं नवाब वजाहत मिर्जा की जबानी सुन चुका हूं कि फरीदी जवान आदमी है, और शायद मैंने उसकी तस्वीर भी डॉक्टर शौकत के एल्बम में देखी थी।
अगर ये बात है तो मुझे बहुत ही खुफिया जगह ले चलिए, मैं आपको अपनी शक्ल दिखा दूंगा, फरीदी ने हंसकर कहा और रिवॉल्वर नवाब साहब को वापस कर दिया। नवाब साहब उसे हैरत से देखने लगे।
अच्छा, आओ मेरे साथ, नवाब साहब ने उठते हुए कहा। फरीदी उनके पीछे चल पड़ा। एक छोटे से खूबसूरत कमरे में पहुंचकर नवाब साहब ने दरवाजा बंद कर लिया। जरा थोड़ा सा पानी मंगवाइए, फरीदी ने कहा।
पीने के लिए?
नवाब साहब ने पूछा। जी हाँ, नवाब साहब खुद बाहर चले गए। इतनी देर में फरीदी ने अपना मेकअप बिगाड़ लिया। वापसी पर नवाब साहब दरवाजे पर ही ठिठक कर खड़े हो गए।
अरे,
उनकी जबान से निकला और फरीदी ने बढ़कर पानी का गिलास उनके हाथ से ले लिया।
वही, बिल्कुल वही, मैंने तुम्हारी तस्वीर गौर से देखी थी। अरे वाकई तुम तो फरीदी हो, बैठो बैठो।
फरीदी मुस्कुराता हुआ बैठ गया।
भाई माफ करना, मैंने तुम्हें बिना जाने हुए काफी भला बुरा कहा,
नवाब साहब ने माफी मांगी। और मैंने भी तो सिर्फ जान जाने के डर से आपकी शान में गुस्ताखी की है, जिसकी मैं माफी चाहता हूँ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। जिस वक्त मुझे बदमाशों का खत और गजाला की तस्वीर मिली थी, मेरे दिल में सबसे पहले तुम्हारा ही ख्याल आया था कि क्यों ना तुमसे मदद लूं।
बहरहाल मैं हाजिर हूं, फरीदी हंसकर बोला।
मगर वाकई तुम बहुत बहादुर हो, जैसा सुना था वैसा ही पाया।
सब आप बुजुर्गों की दुआएं हैं। मुझे वजाहत मिर्जा की जबानी मालूम हुआ है कि तुम नवाब आबिद अली खां मरहूम के लड़के हो।
मरहूम मेरे क्लास फेलो थे और मेरे दूर के रिश्तेदार भी होते थे। अरे भाई, तुम तो अपने ही बच्चे हो।
इस रिश्ते पर मुझे और भी खुशी हुई।
मुझे ये भी मालूम हुआ कि तुम सिर्फ शौकिया इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो।
अरे, तुम्हारे वालिद मरहूम को भी इन्वेस्टिगेशन का बड़ा शौक था।
आखिर क्यों ना हो, उन्हीं के तो लड़के हो।
फरीदी को डर मालूम हुआ कि कहीं अब नवाब साहब वालिद मरहूम की जासूसी का कोई वाकया ना सुनाने लगे, इसलिए वो जल्दी से बोला, हाँ तो जरा वो खत मुझे भी दिखाइए। फरीदी ने कहा,
मैं अभी लाया,
कहकर नवाब साहब कमरे से चले गए। कुछ मिनट बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने एक लिफाफा फरीदी की तरफ बढ़ा दिया। उसमें एक टाइप किया हुआ खत था और एक तस्वीर वैसी ही जैसी गजाला ने फरीदी को दिखाई थी। फरीदी खत पढ़ने लगा। नवाब साहब, अपनी बेटी की करतूत देखिए। बेशुमार तस्वीरों में से ये एक तस्वीर आपको रवाना कर रहा हूँ। तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है, शायद उसे भी आप पहचानते होंगे। ये तस्वीर स्विट्जरलैंड में ली गई थी। मैंने इन तस्वीरों की कीमत 20 करोड़ रुपए रखी है। आपकी साहबजादी बजाय इसके कि आपसे सलाह लेती, खुफिया पुलिस के पास जा पहुंची। मजबूरन हमें उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अगर आप अपनी बेटी की वापसी इन तस्वीरों समेत चाहते हैं तो कल रात 9 बजे मांगी हुई रकम के साथ शहर आइए और विक्टोरिया पार्क में विक्टोरिया के बुत के पीछे मिलिए। आपको तस्वीरों के साथ नेगेटिव भी मिल जाएंगे और आपकी साहबजादी भी रिहा कर दी जाएंगी। अगर आपने कोई चाल चलने की कोशिश की तो नतीजे के आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस सिलसिले में आपकी जान भी जा सकती है और आपकी साहबजादी की इज्जत भी। रुपया कल हमें मिल जाना चाहिए, वरना देर होने की सूरत में आपको मौजूदा रकम का 1.5 गुना अदा करना पड़ेगा। जब आप मांगी गई रकम लेकर आए तो आपको अकेला होना चाहिए। एक बार फिर हिदायत दी जाती है कि काफी एहतियात से काम लिया जाए। फरीदी खत पढ़कर कुछ देर ख्यालों में उलझा रहा और फिर अचानक बोला, सबसे पहले तो मैं आपको आपकी साहबजादी की बेगुनाही पर मुबारकबाद देता हूं।
मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा।
देखिए, बदमाशों के पास इस तस्वीर के अलावा कोई दूसरी तस्वीर नहीं है।
मैं अब भी नहीं समझा।
यही तस्वीर मुझे गजाला खानम ने भी दिखाई थी और यही तस्वीर उन्हें स्विट्जरलैंड में भी मिली थी। इसका मतलब ये है कि बदमाशों के पास इसके अलावा और कोई तस्वीर नहीं, और इसका 100% मतलब यही है कि इस तस्वीर के बारे में गजाला खानम का बयान सही है।
वो तो ठीक है, मुझे भी यकीन नहीं आया था। गजाला लाख आजाद ख्याल की सही, मगर वो इतना नहीं गिर सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर खुलासा किस तरह हो। 20 करोड़ रुपए कम से कम मेरे बस की तो बात नहीं।
कोशिश तो यही की जाएगी कि यूं ही काम चल जाए। लेकिन मैंने भी ये खत देखकर जो स्कीम बनाई है उसके तहत आपको काफी होशियार रहना पड़ेगा।
वो किस तरह?
मैं आपका भेस बदल कर जाऊंगा और आपको यहाँ उस वक्त तक कैद रहना होगा जब तक कि मेरी तरफ से आपको कोई खबर ना मिले। आपको यहाँ इस तरह छिपे रहना पड़ेगा कि महल के किसी भी शख्स को आपकी मौजूदगी का पता ना चले। शायद आप समझ गए होंगे।
अच्छी तरह समझ गया। लेकिन अगर बदमाशों को पता चल गया तो क्या होगा? वे लोग तो काफी चालाक मालूम होते हैं।
पहली बात तो ये कि उन्हें मालूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए शहर में अच्छा खासा जाल बिछा कर आया हूँ, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। और अगर मालूम हो भी गया तो और कोई रास्ता निकाला जाएगा।
बहरहाल भाई, अब तुम जानो, मुझे तो इत्मीनान हो गया।
अच्छा तो ये बताइए कि जब आप शहर जाते हैं तो किस होटल में ठहरते हैं?
होटल ग्रीन में,
नवाब साहब ने जवाब दिया। फरीदी खामोश होकर कुछ सोचने लगा।
तो गजाला कब तक यहाँ पहुंच जाएगी?
नवाब साहब ने पूछा। उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन जब आपको मुबारकबाद का कोई भी तार मिले तो समझ लीजिएगा कि गजाला महफूज है और मैं खुद उसकी हिफाजत कर रहा हूँ। उस दौरान आपको बिल्कुल खामोश रहना पड़ेगा। आप शहर आकर मुझसे मिलने की कोशिश भी ना कीजिएगा।
बहुत अच्छा, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करूँगा,
नवाब साहब ने कहा।
तो क्या तुम सुबह ही जाओगे? उन्होंने फरीदी से पूछा।
जी हाँ,
और उस वक्त तक मैं सारी तैयारियां पूरी कर लूंगा। फिलहाल आप मुझे अपने कुछ ऐसे कपड़ों के जोड़े दें जो आप आम तौर पर पहना करते हैं, और दो सूटकेस भी दें, एक में कपड़े रखवा दीजिए और दूसरा खाली रहने दीजिए।
बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर इंतजाम करता हूँ।
नवाब साहब जाने के लिए मुड़े, ठहरिए। इस इंतजाम की भनक किसी के कान में पड़ने ना पाए।
हरगिज नहीं, तुम इत्मीनान रखो।
नवाब साहब चले गए और फरीदी ने सोफे पर गिरकर आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। दूसरे दिन सुबह फरीदी नवाब रशीदुज़्ज़मा के भेस में महल से निकला और कार में बैठकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। शहर पहुंचकर उसने टैक्सी की और ग्रीन होटल पहुंच गया। होटल मैनेजर शायद नवाब रशीदुज़्ज़मा से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने खूब खैर मकदम किया और इस बार इस तरह अकेले आने पर ताज्जुब करते हुए इधर उधर की बातें शुरू कर दी। दिन भर फरीदी इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। शाम होते ही वो फिर होटल वापस आ गया। इस दौरान उसने कई बार महसूस किया कि एक आदमी उसके पीछे लगा हुआ है और ये शख्स प्रिंस अदनान था। फरीदी दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। इस चीज से उसने ये अंदाजा भी लगा लिया था कि लियोनार्ड के पास इस खास काम के लिए शायद यही एक आदमी है। उसने इस मामले में ज्यादा राजदार बनाए नहीं है। इस ख्याल के आते ही उसे अपनी कामयाबी और ज्यादा पक्की मालूम होने लगी। लगभग 8 बजे वो सूटकेस हाथ में लटकाए हुए होटल के बाहर आया और टैक्सी करके विक्टोरिया पार्क की तरफ रवाना हो गया। पार्क में बिल्कुल सन्नाटा था। ठंड इतनी पड़ रही थी कि पार्क में उस वक्त रुकने की हिम्मत करना आसान काम न था। फरीदी एक कुंज में घिरे हुए विक्टोरिया के बुत के पीछे जा बैठा और सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। लगभग 9 बजे उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और वो सीधा होकर बैठ गया। आने वाले ने अपने कोट के कॉलर से अपना चेहरा छिपा रखा था, लेकिन फरीदी ने उसके अंदाज से पता लगा लिया कि वो प्रिंस अदनान है। फरीदी यूं ही लापरवाही से सिगरेट पीता रहा। प्रिंस अदनान उसके करीब आकर खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था। लोगों ने इस पार्क को भी अय्याशी का अड्डा बना लिया है, भला कोई तुक है इतनी रात गए यहां? उसने ये सब इस अंदाज में कहा जैसे कि वो कोई पुलिस अफसर हो। कहिए जनाब, आप कौन हैं और इस वक्त बैठे यहां क्या कर रहे हैं? उसने फरीदी से पूछा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? फरीदी ने कड़े तेवर में जवाब दिया। मैं अभी बताता हूं कि मैं कौन हूं। ये उसी वक्त तुम्हारी समझ में आ जाएगा जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां होंगी। अभी कल ही यहां पर एक नौजवान लड़की बेहोश पाई गई। कमबख्तों ने अय्याशी का अड्डा बना रखा है इस पार्क को, अदनान ने कहा। मैं तो मुसाफिर हूं, फरीदी हकलाने लगा। मुसाफिर हो तो किसी होटल वगैरह में जाओ, यहां बैठकर क्यों झक मार रहे हो? प्रिंस अदनान ने कहा। क्या बताऊं साहब, स्टेशन पर मेरी जेब कट गई, फरीदी ने रो देने वाले अंदाज में कहा। समझ में नहीं आता इस वक्त मैं कहां जाऊं, प्रिंस अदनान हंसने लगा। बहुत अच्छे रशीदुज़्ज़मा साहब, आप अपनी लड़की से ज्यादा समझदार हैं। कहिए, रकम लाए हैं?
मेरी बेटी कहां है?
फरीदी बोला। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, वो आप तक पहुंच जाएगी। तस्वीरें नेगेटिव समेत मैं अपने साथ लाया हूं। लड़की आपको उस वक्त मिलेगी जब हम रुपया गिन लेंगे।
अगर मेरी लड़की को जरा बराबर भी नुकसान हुआ ना, तो याद रखना 20 करोड़ के बजाय तुम लोगों से 40 करोड़ वसूल करूंगा। अभी तुम लोग मुझे जानते नहीं हो,
फरीदी ने कहा और सूटकेस उसकी तरफ बढ़ा दिया। प्रिंस अदनान ने सूटकेस हाथ में लेकर तौला और फिर जमीन पर रख दिया।
इसमें हजार हजार के नोट हैं।
खैर, देखा जाएगा, ये लीजिए तस्वीरें। प्रिंस अदनान ने फरीदी के हाथ में एक लिफाफा दे दिया। फरीदी ने तस्वीरें निकाल कर देखी, उनमें नेगेटिव भी मौजूद था। उसने लिफाफा जेब में रख लिया।
मैं किस तरह यकीन करूं कि तुमने सारी तस्वीरें दे दी हैं?
फरीदी ने कहा। आप यकीन कीजिए कि हम लोग मामले के पक्के हैं।
लेकिन हम लोग किस तरह यकीन करें कि सूटकेस में पूरी रकम है? इसका तो तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। ऐसी सूरत में जबकि मेरी लड़की तुम लोगों की कैद में है, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ?
हाँ, ये बात तो कायदे की कही आपने। अच्छा, कल शाम तक लड़की आप तक पहुंच जाएगी।
प्रिंस अद्दान जाने के लिए मुड़ा, लेकिन दूसरे ही पल फरीदी ने उछल कर उसे दबोच लिया। प्रिंस अद्दान ने उसकी पकड़ से निकल जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फरीदी ने 2-3 बार उसका सिर संगमरमर के चबूतरे से टकरा दिया जिस पर विक्टोरिया का बुत लगा हुआ था। प्रिंस अद्दान बेहोश हो गया। 2 घंटे के बाद फरीदी उसी शराब खाने के तहखाने में आया जहां से वो दाराब नगर के लिए रवाना हुआ था। वो शराब खाने के मैनेजर की मदद से बेहोश प्रिंस अदनान को एक खंभे से बांध रहा था।
इंस्पेक्टर साहब, वाकई आप भी बला के आदमी हैं,
शराब खाने का मैनेजर बोला। अगर मैं बला का आदमी ना होता तो शायद तुम्हारे हाथों मुझे भी कब्र में ही सोना पड़ता।
इसमें तो कोई शक नहीं, अगर आपकी बजाय कोई और होता तो उसका यही अंजाम होता, मगर आपको तो मैं उस्ताद कह ही चुका हूं।
अच्छा मेरे शागिर्द, लेकिन तुमने बहुत बेदर्दी से नाजायज शराब बेचनी शुरू कर दी है, जरा एहतियात से।
मेरा दावा है कि सिवा आपके से और कोई नहीं कह सकता,
मैनेजर ने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। यही मतलब था, फरीदी ने कहा और प्रिंस अदनान को होश में लाने की कोशिश करने लगा।
आखिर मामला क्या है,
मैनेजर ने पूछा। मामला बहुत उलझा हुआ है, सुलझ जाने के बाद बताऊंगा, लेकिन तुम इसकी अच्छी तरह हिफाजत करना, ये निकल कर जाने ना पाए, वरना निकल गया तो तुम जिम्मेदार होगे।
अरे भला ऐसी भी क्या बात है, यहाँ पर तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता,
मैनेजर ने कहा। प्रिंस अदनान को होश आ गया, वो घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखने लगा। फरीदी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था।
नवाब रशीदुज़्ज़मा ने मुझे धोखा दिया है,
प्रिंस अदनान अंग्रेजी में बड़बड़ाया। तुम बिल्कुल ठीक समझे, फरीदी ने हिंदी में कहा।
मैं तुम्हारी जबान नहीं समझता, क्या तुम अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते,
प्रिंस अदनान ने कहा। मेरी जबान तो तुम ऐसी समझते हो कि जैसा तुम्हें समझना चाहिए, अगर तुम कहो तो तुम्हारी मादरी जबान गुजराती में बात करूं। प्रिंस अदनान चौंक पड़ा। चौंको नहीं मिस्टर जमशेद, तुम दूसरों की आंख में धूल झोंक सकते हो, मेरी नहीं।
मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो,
प्रिंस अदनान गुस्से में बोला। तुम इराक के एक शहजादे की तौहीन कर रहे हो, तुम्हारी हुकूमत को उसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। हाँ, ठीक कह रहे हो मिस्टर जमशेद, हमारी हुकूमत काफी दिनों से तुम्हारी ताक में है।
क्या बकवास है, कौन जमशेद, कैसा जमशेद, तुमसे कुछ गलत फहमी हुई है।
जनाब मुझे तो अक्सर गलत फहमी हुआ करती है। तुम समझे थे कि मैं तुम्हारी उस तस्वीर वाली धमकी से डर कर तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा।
क्या बकवास लगा रखी है, मुझे फौरन खोल दो वरना अच्छा नहीं होगा,
अदनान ने चीख कर कहा। अगर मैं तुम्हें यहां से रिहा कर भी दूं तो शक के तहत तुम्हें हवालात में रहना पड़ेगा। तुम क्या समझते हो, मेरे पास तुम्हारे काले कारनामों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और तुम्हारी उंगलियों के निशान भी, जो मैंने उस कागज से हासिल किए थे जो तुम छपने के लिए न्यू स्टार के दफ्तर में दे आए थे। अदनान के चेहरे पर अब पसीना आ गया।
सब बकवास है, वो चीखा।
खैर बकवास ही सही। हाँ तो ये बताओ लियोनार्ड कहाँ है।
लियोनार्ड
का नाम सुनते ही प्रिंस अदनान बुरी तरह चौंक पड़ा और हैरत से फरीदी को घूरने लगा। इस तरह घूरने से काम न चलेगा, ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। इस वक्त तुम हुकूमत की हिरासत में नहीं बल्कि सीधे मेरी हिरासत में हो। मैं इस राज को उगलवाने के सिलसिले में तुम्हें कत्ल भी कर सकता हूँ। फरीदी के चेहरे पर अजीब किस्म की सूरत बन गई जिसे देख कर शराब खाने का मैनेजर भी कांप गया।
अंगीठी में कोयले दहकाओ, फरीदी ने मैनेजर की तरफ देखकर कहा। जी अच्छा,
कहकर मैनेजर चला गया। मैं लोहा लाल करके तुम्हारे जिस्म पर इतनी बार रखूंगा कि काले होकर रह जाओगे।
लेकिन आखिर क्यों, मेरी हुकूमत, चुप रहो,
हुकूमत के बच्चे,
मैं जो पूछता हूँ उसका सही सही जवाब दो वरना अभी सारी हुकूमत की हकीकत मालूम हो जाएगी।
मैं नहीं जानता, अदनान ने घुटी हुई आवाज में कहा। इतनी देर में मैनेजर दहकती हुई अंगीठी लेकर आ गया। इसमें लाल होने के लिए लोहे की एक सलाख तो डाल दो, फरीदी ने मैनेजर से कहा। अदनान सिर से पैर तक कांप उठा। फरीदी लाल होती हुई सलाख को गौर से देख रहा था। सलाख के लाल हो जाने पर फरीदी उसे अंगीठी से निकालकर धीरे धीरे अदनान की तरफ बढ़ने लगा।
मैं मुजरिम हूं, मगर तुम्हें इसका हक नहीं है, बिल्कुल कोई हक नहीं है,
अदनान डरी हुई आवाज में चीखा। यहाँ इस तहखाने में मुझे हर तरह के हक हासिल हैं, फरीदी ने बेदर्दी से कहा और जलती हुई सलाख उसके हाथ पर रख दी। अदनान बिलबिला उठा और शराबखाने का मैनेजर मुंह फेरकर दूसरी तरफ हट गया। मैं तुम्हें इसी तरह जला जला कर रख दूंगा, समझे?
लेकिन तुम्हारी ये हरकत कानून के खिलाफ है,
अदनान अपनी मादरी जबान गुजराती में चीखा। शाबाश मेरे बेटे, आखिर तुम अदनान से जमशेद हो ही गए। अब जल्दी से यह भी बता दो कि लियोनार्ड कहाँ है, फरीदी ने सलाख को दोबारा अंगीठी में डालते हुए कहा।
मुझे नहीं मालूम।
फिर वही,
पवित्र आग की कसम, मैंने उसे आज तक नहीं देखा।
तुम झूठे हो,
अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं,
अदनान ने जले हुए निशान की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो उसके हुक्म तुम तक कैसे पहुंचते हैं?
ट्रांसमीटर से।
ठीक, तो ये बताओ कि जिस बिल्डिंग में तुम रहते हो उसमें ट्रांसमीटर कहाँ लगा हुआ है?
मेरे सोने के कमरे में।
तुम्हारे नौकरों को तुम्हारी हरकत की खबर है या नहीं?
सिर्फ एक को।
उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका?
राजू।
तुम लोगों का उस मकान पर कब से कब्जा है?
लगभग 10 साल से।
लियोनार्ड के प्रोग्राम से तुम्हारे अलावा और भी कोई वाकिफ है?
नहीं।
गजाला कहाँ कैद है?
मुझे नहीं मालूम।
झूठ बकते हो।
मुझे नहीं मालूम कि लियोनार्ड ने उसे किस तरह गायब किया और कहाँ छुपा रखा है।
उसके बाद खामोशी छा गई। फरीदी ने महसूस किया कि अदनान बार बार अपना हाथ सीने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। फरीदी ने झपट कर उसके चेस्टर के गिरेबान में हाथ डाल दिया। उसके सीने पर एक ठोस सी चीज बंधी हुई थी। फरीदी ने उसे खींच कर बाहर निकाला और वो एक चपटा हुआ सा ट्रांसमीटर था। ओह, तो ये कहिए कि आप अपनी गिरफ्तारी की खबर लियोनार्ड को देने जा रहे थे, हुँ? फरीदी ने ट्रांसमीटर को गौर से देखते हुए कहा। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जर्मनी के जासूस जंग के वक्त इस्तेमाल किया करते थे। अदनान के चेहरे से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अब उसे अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद ना रह गई हो। अच्छा शागिर्द साहब, अब मैं चलता हूं, इस पर कड़ी नजर रखना, फरीदी ने होटल के मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा। फरीदी और मैनेजर अदनान को तहखाने में छोड़कर ऊपर आ गए। उसके बाद क्या हुआ अदनान के साथ, कैसे पहुंचा फरीदी गजाला तक, और कौन है लियोनार्ड, जानने के लिए सुनिए अगला भाग।